یہ پروگرام امریکی عوام کی مدد اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تمام مواد کی ذمہ داری پاکستان ریڈنگ پروجیکٹ کی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پروگرام میں شامل مواد یو ایس ایڈ یا امریکی عوام کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہو۔
دیش کے گلستاں میں درد کی ہمیشہ ہے، دیش کے گلستاں میں درد کی ہمیشہ ہے۔
السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی نورا بی اور چاچا جگمگ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں،
لیکن ہماری تیسری ساتھی یعنی ببلی ابھی تک اسٹوڈیو میں نہیں پہنچی۔ نور، کیا ہوا، آج نہیں آ رہی؟
نہیں نہیں چاچا جگمگ، ایسا نہیں ہے، ببلی بس ابھی پہنچنے والی ہے۔
السلام علیکم ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ چاچا جگمگ خفا ہوں گے۔
یوں تو نہیں ہے ببلی، بس انہیں آپ کی فکر ہو رہی تھی۔
یہ میرے لیے اور بھی خوشی کی بات ہے، ورنہ میں تو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔
تو کیا تمہیں ہماری شفقت پہ شک ہے؟
نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سبھی کو ایک دوسرے کا خیال رہتا ہے، مگر آج ہمارا کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا اور میں اسکول کی ٹیم کی طرف سے کھیل رہی تھی۔ میچ ختم ہونے میں تھوڑا وقت لگ گیا، اس لیے میں تھوڑی دیر سے پہنچی۔
اگر میرا بس چلے تو میں تم لوگوں کے کھیل پہ پابندی لگا دوں، ہر روز کھیل اور بس کھیل۔
چاچا جگمگ، یہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کھیلنا بچوں کے بنیادی حقوق میں آتا ہے۔
کس نے دیا ہے انہیں یہ حق؟
ہمارے ملک کا قانون انہیں تعلیم، صحت اور خوراک کے ساتھ ساتھ تفریح اور کھیل کود کا حق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے حقوق کے عالمی منشور یعنی سی آر سی کے آرٹیکل 31 میں بچوں کی تفریح اور کھیل کود کو ایک بنیادی حق کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔
اور چاچا جگمگ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان نے بچوں کے عالمی منشور کی توثیق بھی کی ہوئی ہے، اور پاکستان کا قانون بھی ہم بچوں کو یہ حق دیتا ہے۔
اور میں تو کہوں گا کہ ہمارے یہاں بچوں کے کھیلنے کے مواقع ہی بہت کم ہیں، اس حوالے سے کوئی باقاعدہ اعداد و شمار تو دستیاب نہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی اسکولوں کی بھی ایک کثیر تعداد میں کھیلوں کے میدان موجود نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رہائشی علاقوں میں بھی کھیلوں کے میدان نہیں ہیں۔
چاچا جگمگ، اس موضوع پر ہم بات جاری رکھیں گے، لیکن مجھے پہلے پروگرام کی تفصیل بتا دینی چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں بات چیت کے علاوہ شامل رہیں گے ہمارے معمول کے سلسلے یعنی خزانہ، نظم، بولتی کتاب اور آج کی کہانی۔
میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہر وقت تک کھیل کود بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے، اس طرح وہ پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے چاچا جگمگ، یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی۔ کھیلنے کے حق سے ہمیں یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ بچے جب چاہیں کھیلتے رہیں، بلکہ ضروری ہے کہ دن بھر کی پڑھائی اور دوسرے ضروری کام نپٹا کر کھیل کی طرف توجہ دی جائے۔
اور اس سے ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہم تو اسکول کے بعد بھی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق پڑھتے اور کھیلتے ہیں۔
تو کیا آج کا میچ بھی آپ کے ٹائم ٹیبل میں شامل تھا؟
ارے چاچا جگمگ، بس اب معاف بھی کر دیں بیچاری کو، آج کا میچ تو اسکول کی طرف سے رکھا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اسکول ٹائمنگ میں ہی کھیلا گیا ہے، اور اس طرح کے میچ کوئی روز روز تھوڑی ہوتے ہیں۔
بہرحال چاچا جگمگ کا شکریہ کہ انہوں نے کھیل کو بچوں کے حق کے طور پر تسلیم کیا۔
اس کے ساتھ ساتھ میں ان ماں باپ سے بھی درخواست کروں گی جو بچوں کے کھیلنے کو پسند نہیں کرتے، کہ وہ بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ کھیل کود بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ایک ضروری عمل ہے، اور ہمیں بچوں کو کھیلنے کے مواقع ضرور فراہم کرنے چاہیے، لیکن ہمیں کھیل کے ساتھ ساتھ بچوں کی خوراک کے حق کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ انہیں متوازن غذا کی فراہمی کو یقینی بنانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔
ہاں یہ تو ہے، جب حق ہے تو پھر دینا ہی پڑے گا۔
ساڈا حق ایتھے رکھ۔
میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چاچا جگمگ کی تفریح کا بھی کچھ خیال کر لینا چاہیے۔
یعنی نظم؟
جی ہاں، تو آئیے سنتے ہیں یہ پیاری سی نظم۔
جنگل میں ایک میچ ہے جاری، آؤ دیکھو تم، اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ جنگل میں ایک میچ ہے جاری، آؤ دیکھو تم، اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ اور بھی کچھ دلچسپ ہوا ہے جب سے اپنا میچ، پہلے چیتا آؤٹ ہوا، پھر شیر کا نکلا کیچ۔ اور بھی کچھ دلچسپ ہوا ہے جب سے اپنا میچ، پہلے چیتا آؤٹ ہوا، پھر شیر کا نکلا کیچ۔ بھالو نے جب گگلی پھینکی، گھما کے اپنی دم، اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ جنگل میں ایک میچ ہے جاری، آؤ دیکھو تم، اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ میچ کے آخری اوور میں جب چھ رن تھے درکار، ایک ہی گیند کی دوری پر تھی جیت یا اپنی ہار۔ میچ کے آخری اوور میں جب چھ رن تھے درکار، ایک ہی گیند کی دوری پر تھی جیت یا اپنی ہار۔ بندر نے جب چھکا مارا، گیند ہی ہو گئی گم۔ اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ جنگل میں ایک میچ ہے جاری، آؤ دیکھو تم، اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔ را 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 اٹھو بھی اب آؤ، کیوں بیٹھے ہو تم گم سم۔
واو، تو یہ کرکٹ جنگل میں بھی اتنا ہی مقبول ہے جتنا ہمارے یہاں؟
بھائی کھیل جانوروں کا بھی تو حق ہو سکتا ہے نا۔
ارے ہاں، کیوں نہیں چاچا جگمگ، جانوروں کے اس حق کو تو ہمیں اب تسلیم کر ہی لینا چاہیے۔
نورا پی، خزانہ میں آج کیا سنوا رہی ہیں آپ؟
ببلی، خزانہ میں آج ہم انگریزی حروف تہجی کے حرف جی کی نظم سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں یہ نظم۔
You are light and I am ray. You can call me Mr. J. You are light and I am ray. You can call me Mr. J. You are light and I am ray. You can call me Mr. J. Start with Mr. J. You are light and I am.
अच्छी नज़म थी, इससे हमने बहुत से नए लफ्ज़ भी सीखे हैं।
और आज की कहानी के बारे में क्या खबरें हैं?
कहानी तो हर हाल में सुनेंगे।
हाँ।
चले तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका उन्वान है जिसका काम उसी को साझे।
आज नंदी के सहन के कोने में रखे दरबे में सुबह से ही बहुत चहल पहल थी। आज टूटू अपनी अम्मी और बहन भाइयों के साथ सैर को जा रहा था। टूटू सब चूजों में से ज्यादा शरारती और घूमने फिरने का शौकीन था, इसलिए नहायत खुश था। उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन वो हमेशा खुद को बड़ा तसव्वुर करता और वो कुछ भी करने की कोशिश करता जो बड़े मुर्गे भी करने से गुरेज करते। अभी कुछ ही दिन पहले वो नन्ही के कुत्ते को उस वक्त कान पर जाके चोंचे मारकर शरारतें करने लगा जब वो सो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि नन्ही देख रही थी, वरना कुत्ते ने तो टूटू की जान ही ले लेनी थी। खैर आज वो बहुत खुश था, कुछ ही देर में सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। घर से निकलने से पहले अम्मी ने टूटू को समझाया कि वो सबके साथ रहे और शरारतों से बाज रहे, लेकिन टूटू ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खैर चूजों की अम्मी अपने सारे बच्चों को साथ लेकर नदी की तरफ सैर के लिए चल गई। थोड़ी ही देर में वो नदी के किनारे थे। टूटू और उसके बहन भाइयों को ये मंजर बहुत पसंद आया, सब बहुत खुश थे। वहाँ उनकी मुर्गी अम्मी ने नदी के किनारे हरियाली में अपने बच्चों को कीड़े मकोड़े पकड़ने की मशक करवाई। उसके बाद इधर उधर टहलने लगे। मुर्गी ने बच्चों को हिदायत की कि कोई भी ज्यादा दूर न जाए। टहलते हुए टूटू ने एक हरे रंग का बड़ा सा टिड्डा देखा। उसका शिकार था तो काफी मुश्किल, लेकिन टूटू मियां ने बहादुरी दिखाने और दाद पाने का ये मौका जाया न करना मुनासिब नहीं समझा और टिड्डे के पीछे चल पड़े। कुछ देर टिड्डे का पीछा करने के बाद टूटू एकदम से बहुत गहरी घास में पहुंच गया। अब उसके चारों तरफ घनी और ऊंची घास थी। इतनी ऊंची घास में तो टूटू को कुछ भी देख नहीं सकता था। वो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरफ से आया है, किस तरफ जा रहा है। फिर घास की तेज पत्तियां उसके जिस्म को जख्मी कर रही थी। अब टिड्डा भी आंखों से उजल हो चुका था। टुट्टू को अब हालात की संगीनी का एहसास होना शुरू हो गया था, क्योंकि अब वो रास्ता भूल चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसे रोना आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत से काम लिया और नाक की सीध में चल पड़ा। काफी देर चलने के बाद उसे कुछ चूजों के बोलने की आवाजें सुनाई दी, तो वो घास में ही से आवाजों की तरफ चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने खुद को एक नदी के किनारे पाया। ये एक बहुत खूबसूरत मंजर था। दूर तक नदी बल खाती भी बह रही थी। नदी के दोनों किनारों पर खूबसूरत सब्जे ने मंजर को और भी खूबसूरत बना रखा था, जबकि वहाँ काफी तादाद में फलदार दरख्त भी नदी के किनारे दूर तक फैले हुए थे। यहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे उसी की उम्र के कुछ चूजे खेल रहे हैं। उसने देखा कि चूजे देखने में उससे कुछ मुख्तलिफ लगते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ बढ़ा और अपना तारुफ करवाया। चूजों ने परेशान टूटू को खुशामदीद कहा और अपने साथ खेलने की दावत दी, जिसे टूटू ने खुशी से कबूल कर लिया। कुछ ही देर में टूटू अपने घर वालों को भूल चुका था और खेल में मगन था। वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। इस दौरान एक चूजा छुप जाता जबकि बाकी चूजे उसे मिलकर ढूंढते थे। इसी दौरान उन्होंने घास में मौजूद छोटे छोटे कीड़े मकौड़ों को भी शिकार करना शुरू कर दिया। टूटू को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे इन मुख्तलिफ से चूजों के साथ खेलते हुए कोई अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि उसे तो यूं लग रहा था जैसे अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा हो। खेल के दौरान ही एक चूजे ने मशवरा दिया कि क्यों ना नदी के ठंडे पानी में तैराकी की जाए और खूब मौज मस्ती की जाए। टूटू ने नदी की तरफ देखा तो उसे चूजों की तरह ही दिखने वाली एक मुर्गी पानी में तैरती हुई दिखाई दी। वो शायद इन चूजों की अम्मी थी। देखते ही देखते एक एक कर तमाम चूजे पानी में कूद गए। टूटू को हैरत हो रही थी, सब इतना आसानी से कैसे तैर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि तैरना भी क्या मुश्किल काम है। उसकी वही पुरानी बहादुरी फिर से उस पर हावी हो गई और बाकी चूजों के देखा देखी टूटू भी पानी में उतर गया। लेकिन ये क्या, उसे तो तैरा नहीं जा रहा था। उसके पर पानी में गीले होकर और भी भारी हो रहे थे और वो अपने पर भी हिला नहीं पा रहा था। उसे तो अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वो डूब रहा था जबकि बाकी चूजे बड़े मजे से तैर रहे थे। उसका दम घुट रहा था, वो पै दर पै गोते खा रहा था। पानी उसकी चोंच के अंदर जा रहा था, उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसने फड़फड़ा कर पानी की सतह के ऊपर रहने की कोशिश की और जोर जोर से चीखना शुरू किया, बचाओ बचाओ। चूजों की माँ ने जब टूटू के चिल्लाने की आवाज सुनी तो तेजी से टूटू के पास आई और उसे अपने परों में समेटते हुए नदी के किनारे की तरफ लाई। चूजों की मामा उसे अपने रहने की जगह तक ले आई और उसे अपने परों की गर्मी पहुंचाने लगी। बाकी सारे चूजे भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, सोच रहे थे कि टूटू डूब क्यों गया था। हालांकि उन्हें तो तैरने में कभी मुश्किल नहीं पेश आई, वो तो पानी में भी वैसे ही खुश रहते हैं जैसे खुशकी पर। थोड़ी देर में जब टूटू के होश कुछ ठिकाने लगे तो उसने मुर्गी को सारी कहानी सुनाई। तब उस मुर्गी ने उसे बताया कि वो मुर्गी नहीं बल्कि बतख है और बाकी के चूजे भी आम चूजे नहीं हैं बल्कि बतख के बच्चे हैं। उसने टूटू को बताया कि बतख पानी में आसानी से तैर सकती है जबकि मुर्गी के चूजे खुश्की पर रहते हैं। टूटू ने जान बचाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। अब टूटू को एहसास हुआ कि वो चूजे इसीलिए उससे कुछ मुख्तलिफ लग रहे थे क्योंकि उनके पांव इस जैसे नहीं थे। बतख ने टूटू से उसके घर के मुतालिक कुछ सवाल किए और उसे छोड़ने उसके घर की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर चलने के बाद बतख ने टूटू का घर तलाश कर लिया जहाँ उसकी अम्मी और बहन भाई सख्त परेशान थे। घर पहुंचते ही टूटू अपनी अम्मी से लिपट गया। टूटू को घर में वापस आते देखकर सबकी जान में जान आई। टूटू की अम्मी ने बतख का शुक्रिया अदा किया और फिर टूटू को समझाने लगी। बतख पानी और खुश्की दोनों जगहों पर रह सकती है, ऐसे ही उसके बच्चे भी पानी से मानूस होते हैं और उन्हें तैरने में कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हम यानी मुर्गियां और उनके बच्चे सिर्फ खुश्की पर ही रहते हैं। हम बतख की तरह तैर नहीं सकते। ऐसे ही दूसरे परिंदे भी देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर उड़ने वाला परिंदा एक जैसा नहीं होता। तमाम परिंदे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ग़िज़ा रहने सहने के तौर तरीके तक एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम वही करें जो हम कर सकते हैं या जो हमारे लिए मुमकिन हो। दूसरों की देखा देखी हमें कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे।
आज मुझे पता चला कि जिसका काम उसी को साजे से क्या मुराद होती है।
इसीलिए तो कहता हूँ ना कि अपने काम से काम रखा करो
और देख ले कि हमारा काम अपने प्रोग्राम को अच्छे अंदाज में पेश करना है, इसलिए अब हमें अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए।
आपने बिल्कुल ठीक कहा नूरापी।
तो आइए फिर हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट यानी बोलती किताब की तरफ और सुनते हैं बोलती किताब की बातें।
मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब, मैं एक गोहरे नयाब, मैं एक गोहरे नयाब, बांटू इल्म के खजाने, बांटू इल्म के खजाने, सिखाऊं अदब अदाब, सिखाऊं अदब अदाब, करूं हर ज़हन को रोशन, करूं हर ज़हन को रोशन, हर एक चेहरे को शादाब, हर एक चेहरे को शादाब। मैं हूँ बोलती किताब, मैं हूँ बोलती किताब।
हाय बोलती किताब।
हाय, कैसी हैं और कहाँ से आ रही हैं आप?
मैं अभी खेल कर आ रही हूँ।
ओह, तो आप खेलती भी हैं। क्या खेलती हैं आप?
कुछ भी, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट और कभी बैडमिंटन।
मगर इससे तो आपकी पढ़ाई मुतासिर होती होगी।
बिल्कुल भी नहीं, मैं रोजाना शाम को अपना होमवर्क मुकम्मल करके पार्क में दूसरे बच्चों के साथ खेलने निकल जाती हूँ और घंटा भर खूब खेलती हूँ। इस तरह मेरी वर्जिश भी हो जाती है और ये मेरी ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा भी है।
खेलने के बारे में तो आप काफी जानती हैं।
हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि बच्चों के आलमी हुकूक के मंशूर यानी CRC में बच्चों के खेल और आराम के हक को भी तस्लीम किया गया है। सो खेलना तो हमारा हक है,
लेकिन पढ़ाई के साथ साथ।
जी हाँ, पढ़ाई तो खैर बहुत जरूरी है।
अच्छा, तो अब चलते हैं मेरे तारुफ की तरफ।
हाँ, मैं देख रही हूँ कि इस बार आपके सरवरक पे मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं।
जी हाँ, और मेरा नाम है चिड़ियाघर में भांजे भतीजे।
वाओ, ये तो मजे का नाम है।
और मुझ में मालूमात भी मजे की हैं।
मेरा ख्याल है कि इस बार आपका मौजू चिड़ियाघर और जानवर हैं।
आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मुझ में मुख्तलिफ जानवरों के बारे में मालूमात दी गई हैं।
आपको लिखा किसने है?
मुझे रुमाना हुसैन ने लिखा है और ये के मेरे हर सफ़े पर तहरीर के साथ साथ जानवरों की रंगीन तस्वीरें भी दी गई हैं, जिससे शायद आप कुछ नए जानवरों के बारे में भी जान सकेंगी।
और आपको किस इदारे ने शाया किया है?
मुझे भी दी बुक ग्रुप कराची ने शाया किया है और मेरा पहला एडिशन 1994 में शाया हुआ था।
तो क्या कुछ और भी बताएंगी आप अपने बारे में?
मुझ में बंदरों की मुख्तलिफ अकसाम के साथ साथ गोरीलों, शेरों, चीतों, हिरन, बारासिंगे, आईबक्स, मारखोर और दीगर कई जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में मालूमात दी गई हैं।
लेकिन ये भी बताएं कि आपकी खास बात क्या है?
मेरी खास बात ये है कि मुझे कहानी के अंदाज में लिखा गया है, यानी एक तस्वीरी कहानी, और यही वजह है कि मुझे पढ़ते हुए बच्चे बोर नहीं होते और उनकी दिलचस्पी बरकरार रहती है।
आहा, ये तो बहुत अच्छा है और मैं आज ही मार्केट जाकर आपको खरीद लाऊंगी और रात को पढ़ूंगी, क्योंकि जानवरों के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जानवरों से प्यार है और पता है मैंने घर में एक बिल्ली भी पाल रखी है और उसका नाम किट्टी है।
फिर तो मुझे यकीन है कि आपके लिए मुझ में काफी दिलचस्प मालूमात छुपी हैं।
आपका बहुत शुक्रिया कि मुझे एक और अच्छी किताब से मुतारिफ करवाया।
और मुझे बच्चों की मदद करके यकीनन खुशी होती है। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई किताब के रूप में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
भाई मैं तो कहता हूँ कि बच्चों को चिड़ियाघर की सैर को जाने से पहले ये किताब जरूर पढ़ लेनी चाहिए ताकि वो जानवरों को अच्छी तरह से जान सकें।
बहुत अच्छी राय है चाचा जगमग आपकी।
हाँ, और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल में भी हम ऐसी किताबों से मुतारिफ होते रहेंगे। जी चाचा जगमग, अब आप आज की प्यारी सी बात बता दें।
भाई नूर, आज मेरे लिए सबसे प्यारी बात यह है, आलमी मंशूर यानी CRC में बच्चों को उनके हकूक दिए गए हैं।
जी चाचा जगमग, और यही आर्टिकल न सिर्फ हमें बच्चों को उनका खेलने का अच्छी खुराक का हक लाजमन फराहम करना सिखाता है, बल्कि घर और बाहर के सतह पर भी हमारी जिम्मेदारी है कि हर तरह से उनका ख्याल रखा जाए।
ये तो बड़ी अच्छी बात है नूरापी।
आखिर में तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आरा और तजावीज के लिए हमें जरूर लिखें ताकि हम अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें।
और हमारा ईमेल एड्रेस है roshni@parkreading.org।
और तमाम सुनने वाले बच्चे जब हमें मैसेज भेजना चाहें, हमारा SMS नंबर है 8333 यानी 8333 पर।
अब नूर, बबली और चाचा जगमग को दीजिए इजाजत।
लेट्स रीड।
ये प्रोग्राम अमरीकी आवाम की मदद और रियासत हाय मुतहदा अमरीका की एजेंसी बराए बैन अलाक्वामी तरक्की के तावुन से पेश किया गया। इस प्रोग्राम के तमाम मवाद की जिम्मेदारी पाकिस्तान ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की है। जरूरी नहीं कि इस प्रोग्राम में शामिल मवाद USAID या अमरीकी आवाम के ख्यालात की तर्जुमानी करता हो।